आज के प्रातः क्लास है 7 जून 1964। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, मीठे मीठे वसीकिले बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इसमें अपनी महिमा क्या है कि और दुनिया वालों के जो तीर्थ हैं, तीर अर्थात पार किनारा लगाने वाले नहीं हैं, और हमारे तीर्थ एक किनारे एक ठिकाने लगाने वाले हैं। हमारी बुद्धि एक ठिकाने लग जाती है, तीर माने किनारा, था माने स्थान, अर्थात ऐसा स्थान जहां हमारी बुद्धि को किनारा मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। तो बाप ने समझाया है कि भारत ही पापात्मा कहलाता है, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारती पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि पापात्मा है तो बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते ही नहीं, उस सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सब स्वस्थिति में रहने वाले हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति अथवा माया के पराधीन रहने वाला हो। तो स्वस्थिति में रहते हैं, इसलिए उनका नाम स्वर्ग है। शिवालय इसलिए कि वो शिवालय शिव के द्वारा स्थापन किया हुआ है। अभी तो वैश्यालय है, ये सारा भारत वैश्यालय है। आलय घर को कहा जाता है, तो वैश्यालय माने वैश्याओं का घर है। जिस वैश्यालय में बड़े बड़े नामी ग्रामी अजामिल जैसे पापात्मा रहते हैं, पापात्माओं में उस मुख्य पाप आत्मा का नाम क्या दिया? अजा, अजा माने बकरी, मिल माने मिल गया। था तो शेरों की कुल का औलाद का, लेकिन मेल मिलाप कर लिया बकरी भेड़ बकरियों से। तो मशहूर है, अभी भारत वैश्यालय है, एक सूरदास की भी कहानी है कि सर्प को पकड़ करके और ऊपर वैश्याओं के पास जाता था। अब सर्प को पकड़ करके कैसे जाएंगे? ऐसे कोई सर्प को पकड़कर ऊपर नहीं जाते हैं। یہ کہانی بنائی دی ہے. تو یہ کتھا کہانیاں جو شاستروں میں بنائی ہوئی ہیں وہ کہاں کی یادگار ہیں؟ سنگم یوگ کی یادگار ہیں ضرور. سرپ کسے کہا جاتا ہے؟ کام وکار کو ہی سرپ کہا جاتا ہے. کام وکار کا آسرا لیا اور باپ کو یاد کیا. من لگا ہوا ہے باپ میں اور کرمیندریاں لگی ہوئی ہیں ویشیاؤں میں, تو اوپر جائیں گے کہ نیچے جائیں گے؟ من لگا ہوا ہے باپ کی یاد میں اور تن کی کرمیندری مکھی کام کامیندری ہے نا, جو نیچے لے جانی پتت بنانے والی ہے, وہ لگی ہوئی ہے ویشیاؤں میں. تو آتما نیچے جاوے گی یا اوپر جاوے گی؟ ارے ہے چکر میں پڑ گئے. من کے بغیر کوئی بھی اندریا رس بھوگتی ہے؟ محبوب کارخانے میں جا رہا ہے, محبوبہ کو یاد کرتے ہوئے جا رہا ہے, کارخانے میں پہنچا, اس سے کسی نے پوچھا تم نے راستے میں کس کو دیکھا؟ وہ کہتا کسی کو نہیں, میں تو اپنے محبوبہ کی یاد میں تھا. تو راستے میں آیا تو کھلی آنکھوں سے آیا یا بند آنکھوں سے آیا؟ تو آنکھوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ لیکن من کہاں تھا؟ من من محبوبہ میں تھا. تو من جہاں ہوتا ہے وہیں دیکھا, یا تن کی کرمیندریاں جیسے آنکھ آنکھ نے دیکھا؟ دسوں کرمیندریاں, ناک کان پانچ گیانیندریاں اور کرمیندریاں پانچ, یہ تب ہی اپنا کام کریں گی جب من ان کو سہیوگ دیوے. اگر من سہیوگ نہیں دیتا ہے تو کرم اندریاں اپنا کاریہ نہیں کر سکتی اور ان کا پاپ پنیہ بھی نہیں لگے گا. تو یہ ایک کہانی بنائی دی ہے کہ سرپ کو پکڑ کر کے اوپر جاتا تھا. اب یہ کہانی لوکک دنیا کے حساب سے جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ اگر سرپ کی پوچھ پکڑے تو سرپ تو الٹ کر کے اس کے ناک میں مار دے گا. ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ ایسے ہونے کی بات نہیں ہے, پرنتو دکھاتے ہیں کہ ایسے ایسے وکاری ہیں جو ویشیاؤں کے پچھاڑی سارا دھن مال کھوئے دیتے ہیں. بچے جانتے ہیں یہ پاپ آتماؤں کی دنیا ہے. کون سی؟ بھارت. پاپ آتماؤں کی بھومی ہے. ستیگ میں یا کلیگ میں؟ کلیگ میں پاپ آتماؤں کی بھومی ہے. اور بھارت میں اس سمے ہی بہت دان پنیہ کرتے ہیں. اس سمے تم بچے بھی باپ کو تن من دھن سب کچھ دے دیتے ہو. تمہارے آگے مثال بھی ہے, یہ بابا جو نمت بنا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں جیسے کرم میں کروں گا مجھے دیکھ کر کے اور کرنے لگ پڑیں گے. تو باپ کہتے ہیں میں ان سے ایسا کرم کراتا ہوں جو سورگ میں بھی نمبر بنا آتا ہے, کیونکہ اس نے تن من دھن دے دیا، جب سے ایسے کیا اور فوراً اشٹو موہا بن گئے، اپنے بچوں کو بھی وارث نہ بنائے، ان ماتاؤں کو بنا دیا، سب کچھ ماتاؤں کے حوالے کر دیا، ٹرسٹی بنا دیا، بولا یہ سب کچھ تمہارے حوالے ہے، تم وارث بن جاؤ بس. انہوں نے کچھ بھی خیال نہیں کیا، ہم تو بابا کے بن جاتے ہیں، بھکتی مارگ میں جنم بائی جنم گاتے آئے، باری جاؤں میرے تو ایک شیو بابا دوسرا نہ کوئی، تو اب میں ان ماتاؤں کو اپنا وارث بناتا ہوں، ان ماتاؤں دوارا ہی سرشٹی کا کلیان ہونا ہے. پہلے ماتا کو اپنا گرو بنا دیا، ماتا کو گرو بنا دیا، بھگوان کو گرو بنانا چاہیے یا ماتا کو گرو بنانا چاہیے؟ بھگوان کو. انہوں نے کیوں بنا دیا ماتا کو گرو؟ انہوں نے مانے کنہوں نے؟ برہما بابا نے. پہلے ماتا کو اپنا گرو بنا دیا، مانے ایور لاسٹنگ تو بھگوان کو ہی بنایا، لیکن پہلے پہلے بابا کے ڈائریکشن کے انوسار پوترتا کا گر سیکھنے کے لیے، پوترتا کی ورد پوری کرنے کے لیے ماتاؤں کو گرو بنایا. کیوں؟ جب بھگوان پرش تن میں آتے ہیں، استری چولے میں تو آتے نہیں ہیں، تو ماتا کو گرو کیوں بنا دیا؟ بھلا بھگوان پرش تن میں آتے ہیں، پرنتو سب پرش دریودھن دشاسن ہیں، وہ اپوترتا کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، پوری پوترتا پالن نہیں کر سکتے، اور کنیا ماتا کر سکتی ہیں، اس لیے ماتا کو گرو بنا دیا. بس ایک بابا کا ڈائریکشن ہے نا، ماتاؤں کو آگے کرو، تو ایک بابا دوسرا نہ کوئی، نہیں تو بچوں آدھے میں وہ تو ہوتا ہے نا. پرنتو ایک دم ان سے دل ٹوٹ گئی، باپ سے دل لگ گئی، بےحد کا ورثہ لینا ہے تو حد کا سب کچھ دینا پڑے، پرنتو باپ تو داتا ہے، وہ کب لیتے نہیں ہیں، شیو بابا تو دینے والا ہے، ڈائریکشن دیں گے ایسے ایسے کرو، تو یہ ماتائیں گرو بن جاتی ہیں. گائن بھی ہے تمیو ماتا چا پتا تمیو، کس کا نام پہلے آیا؟ ماتا کا نام پہلے آیا. تو ستیگ میں بھی پہلے ہے لکشمی، پھر نارائن، پہلے رادھا، پھر کرشن. تو پھر جیسے باپ ماتاؤں کو اٹھاتے ہیں، ویسے ملس کو بھی ماتاؤں کو اٹھانا ہے، انہوں کی سنبھال بھی کرنی ہے. کس سے سنبھال کرنی ہے؟ ماتاؤں کی سنبھال کس سے کرنی ہے؟ کنیاؤں ماتاؤں کی سنبھال کرنی ہے کیچکوں سے، بیچاری ابلائیں ہیں، پرش تو پربل ہوتے ہیں، تن سے بھی پربل ہوتے ہیں اور من سے بھی پربل ہوتے ہیں اور دھن میں بھی کلیوگی دنیا میں پربل ہوتے ہیں. انہوں دریودھن دشاسنوں کو بکھ نہ ملنے سے بہت مارتے ہیں. تو یہ گیان ندیاں ہیں، ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका छोर सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, शिव जयंती पर वहां बड़ा भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र नदी सागर के संगम पर सब यात्रु जाते हैं, वहां जाकर के स्नान करते हैं। बीच में तो शिव बाबा है ज्ञान सागर, और फिर ये ब्रह्मा नदी। ब्रह्मा नदी क्यों कहा? ब्रह्मा नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी? अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर की मिली पर। अभी मैंने कब? कौन से सन की मुरली है? हैं? अभी मैंने 64 की बात। उस समय गंगा सागर का मेला नहीं कहेंगे, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेल नहीं कहेंगे, किसका मेल कहेंगे? ब्रह्मा और सागर का मेल। तो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर तुम आए हो, परंतु वो सब है ज्ञान की बातें। तुम ज्ञान सागर से निकले हो, ज्ञान सागर से ही सबका कल्याण होना है, पानी की तो बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र है शिव बाबा की संतान, तीर्थों का राज भी तो समझते हो, तुम्हारा बुद्धियोग का तीर्थ है, कोई स्थूल तीर्थ तो है नहीं। बुद्धियोग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ, भक्ति मार्ग में तो यहां ही माथा मारते हैं। बाप से बुद्धियोग नहीं लगता, लगता है बाप को जानते ही नहीं। बाप तो एक ही बार आकर के मत देते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसे और कोई भी नहीं कह सकता। एक ज्ञान सागर बाप ही कहते हैं, वो ही सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो हरेक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंचे है भगवान, वो पतित पावन है, वो एक है, सर्वव्यापी नहीं है। पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजाए रहे हैं, खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर के सच्चे तीर्थ पर ले जाता हूं। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति मुक्ति कहते हैं। वो तो समझते हैं कि सुख कागविष्ठा समान है, एक पाई का सुख बाकी है, दुख स्वर्ग में तो नहीं होगा। बाप ने समझाया है वो निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का सन्यास है, और ये है सतोगुणी हद का सन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि से बदल नई सृष्टि में जाना है। हम देवताएं बनते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं, क्या करते हैं? हैं? किस चीज की सफाई करते हैं? दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सफाई करते हैं ना घर की, तो किसकी सफाई हो जाती है? कीड़े मकोड़ों की? कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाती है, वो तो हद के कीड़े मकोड़े हैं, है कहां की बात है? संगम युग में क्या बात है, कौन है कीड़े मकोड़े? अरे जो ज्ञान नहीं समझते हैं, विकारों में ही डटे रहते हैं, वो ही कीड़े मकोड़े हैं। उन कीड़ों मकोड़ों को ब्राह्मणों के परिवार से निकल करके बाहर जाना चाहिए, या अंदर ही बने रहेंगे तो स्वर्ग स्थापन होगा, बाहर हो जाना चाहिए। तो झाड़ू लगाते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल जाएं। अभी तो बेहद की बात है, वो तो हद की सफाई करते हैं, हद के कीड़े मकोड़ों को भगाते हैं। ये तो ह्यूमन कीड़े मकोड़ों को भगाने की बात है। सारी दुनिया ओवरऑल होनी है, पांच तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, फिर वहां तो नेचुरल वैभव रहते हैं। फूल आदि ही ऐसे होते हैं सतो प्रधान, जिन फूलों की घर बैठे भी सुगंध आती रहेगी। जैसे आज की दुनिया में भी कोई कोई फूल ऐसे हैं तीखी सुगंध वाले, जैसे रात की रानी दरवाजे पर लगी हुई हो तो उसकी सुगंध मोहल्ले में जितने भी घर होंगे सब में घुसेगी, तो घर बैठे ही सुगंध आती रहती है। इत्र आदि लगाने की कोई दरकार नहीं, अगरबत्ती की दरकार ही नहीं रहती, नेचुरल खुशबुएं आती हैं। स्वर्ग का नाम लेने से ही अभी देखो मुख मीठा हो जाता है। बुद्धू लोग समझते नहीं है कि स्वर्ग है। 7 से 64 की वाणी का दूसरा पेज, तो देखो बाप नित नया कितना अच्छा ज्ञान समझाते हैं। परमात्मा ये लकी सितारे को कितना ऊंचे बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए। प्रॉमिस है बाबा, हम नष्ट मोहा हो आपसे योग लगावेंगे, आपको ही वारिस बनावेंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, जो कमाई करेगा सो पावेगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप ही करेंगे। हाँ? तो फिर क्या करें, इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे तो पाप ही करेंगे, तो अब हम क्या करें, हम तो इसी दुनिया में रहे पड़े हैं, या मर के दूसरी दुनिया में चले जाएं, क्या करें। जीते जी मरकर जो बाप ने दुनिया दिखाई है तीसरे नेत्र से, स्वर्ग की नई दुनिया, बाप का घर परम धाम, और ये ज्ञान की दुनिया, तो हम तो इस दुनिया को ही छोड़ देते हैं बुद्धि से। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से तुम श्रीमत पर चलेंगे, क्या कहा, श्रीमत पर कब चल सकेंगे पूरा पूरा, जब बाप पर पूरा बलि चढ़ेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, ये दुनिया तो पापात्माओं की है, तो किसको दान करेंगे हैं? सारी दुनिया को पात्र है, सब पापात्मा है, तो दान किसको करें, शिव बाबा को ही करें। अगर कोई शराबी को दान दिया तो फिर उन पर दोष आ जाता है, है? यहाँ ज्ञान में चलने वाले किसी शराबी को ज्ञान दान देते हैं क्या है? फिर ये शराबी का नाम क्यों लिया है? ज्ञान में चलने वाले जो भी ब्राह्मण हैं, उनमें शराबी वो हैं जो दृष्टि से भी विचार करते हैं, वो हैं बेहद के शराबी। ऐसे कपूत बच्चों को दिया तो उसका पाप भी सिर पर आ जाएगा। बाप की पहचान है नहीं, बीके में क्या करते हैं, जो बैठ संदली पर दृष्टि देते हैं कन्याओं माताओं को, उन को बाप की पहचान है? है बाप की पहचान है नहीं, और दृष्टि देते लेते हैं तो दृष्टि का व्यभिचार करते हैं या दृष्टि से सृष्टि सुधारते हैं? व्यभिचार करते हैं। ऐसे शराबी को ध्यान दिया तो पाप सिर पर आ जाएगा, इसलिए सरेंडर हो करके हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए। अगर दिया तो पाप बन जाएगा। हाँ कन्या ज्ञान में नहीं चलती है तो उसको तो देना ही पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है तो नर्ग में गोता खाना चाहती है तो बाप कहते हैं अभी छोटे बड़े सभी का मौत है, वो यादव और कौरव अपना प्लान बनाए रहे हैं, पांडवों का प्लान अपना है। जीत तो आखिर इन पांडवों की हुई ना, बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है, ये तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हैं उन सब को भूल जाओ, फिर नए सिरे बैठे पढ़ो। क्या कहा, क्या पढ़ो नए सिरे हैं? अभी शास्त्रों के पढ़ने की बात बताई ना, कि जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हैं उन सब को भूल जाओ। क्यों भूल जाए? क्यों? शास्त्रों के उल्टे इंटरप्रिटेशन, उल्टी व्याख्या की हुई है, इसलिए अभी फिर तुम नए सिरे बैठ करके पढ़ो। बाप उन शास्त्रों का सार समझाते हैं, जीते जी मरकर फिर बच्चा बनेंगे तो पुरानी बातें सब भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन, हमसे सीखो। क्या कहा, तुम छोटे बच्चे हो, ये क्यों कहा? कब की बात है? हा? छोटे बच्चे ज्ञान समझेंगे क्या? नहीं तो फिर क्यों कहा छोटे बच्चे हो? 64 की वाणी है ना, 64 में बाप सिखाते थे या अम्मा सिखाती थी? सिखाने वाला कौन था? अरे बाप का अम्मा का रूप था या बाप का रूप था? ब्रह्मा माँ का रूप था। तो बोला तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम मेरे से सुनो, हमसे सीखो। अपन को अभी तुम छोटे गोद का बच्चा समझो, वो कोई ज्ञान सुनेगा नहीं। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं ना, उनमें छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बनाए देते हैं, और गुरुओं आदि द्वारा जो कुछ सुना है वो सब भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई मनुष्य की बात ना सुनो। मनुष्य जो कुछ बोलेंगे सो अनराइटियस, रांग ही बोलेंगे। सबसे बुरे ये गुरु लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे बाप सर्वव्यापी, फिर तुम बाप से वर्षा कैसे लेंगे? फिर तो सब ही बाप हो जाएंगे। शिव ओहम तत्त्वम कह देते, वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। सबको उल्टा रास्ता बताए, डुबोए दिया है। पति तो कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने से पति तो बनते हैं, रावण की मत पर चलने वाले गुरु गुसाई। इसलिए बाप कहते हैं सबको भूलो, मां में कम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया, समझो कब्रिस्तान तो बनना ही है। प्रैक्टिकल में ये पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, प्रैक्टिकल में खत्म होने का क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है या शरीर नहीं रहता है तब होता है? तो प्रैक्टिकल में सारी दुनिया खलास हो जाएगी, इसका मतलब ये शरीर सब खलास हो जाएंगे। कब्रिस्तान बनना है फिर परिस्तान बनेगा, बॉम्ब्स गिरेंगे सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा देखो अब कितना नया बन गया है। क्या नाम दिया है ये हिरोशिमा का नाम क्यों दिया? हीरो माने हीरो की, शमा माने रोशनी देने वाली मसाल होती है, उसको कहते हैं शमा। तो जब दुनिया में भी विनाश होगा तो माणिक मोती पन्ना आदि बचेंगे या हीरे जैसी आत्माएं बचेंगी? जो हीरे जैसी हीरो पार्ट बजाने वाली सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो बचेंगी, इसलिए हीरो की क्षमा का मिसाल दिया। हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा, अभी देखो कितना नया बन गया। तो ये सारा भारत खास और आम दुनिया, पहले कब्रिस्तान बनती है फिर परिस्तान बनती है, समझो ये सब मरे पड़े हैं। तो अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, तो बच्चे समझते हो अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ पर आए, रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, मैं आया हूँ पति दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितना रूप धारण करना होता है। क्या मतलब है? जैसे बहुरूपिया रूप बदलते रहते हैं, लाल पीला काला मुंह बनाते रहते हैं, तो क्या ऐसे करते हैं बाबा? नहीं, बाबा तो बिंदी है, एक शरीर छोड़ दूसरे में सेवा करने के लिए प्रवेश करते हैं, तो बहुत बिजी रहते होंगे। बाबा तो है ही जागती ज्योति, आत्माओं की ज्योति आकर के जगाता हूँ योग से, मेरे साथ योग लगाओ, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी, दीवा बुझ जाता है तो गड़ी गड़ी गिरते डालते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप पूरा योग लगाओ, ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है, छोटे बड़े सबका मौत है, ये मृत्यु लोक है, अभी मैं अमरनाथ आया हूँ तुमको अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियां अथवा सीताएं ठहरी, सब रावण की जेल में हो, अशोक वाटिका में पड़े हो, बाप फिर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वो अशोक वाटिका में वहां कोई शोक नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को राइट रंग समझने की बुद्धि मिली है, रंग क्या है, राइट क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये तुम ही जानते हो। योग में रहने से तुम पुण्य आत्मा बनेंगे, योग टूटा और माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया बहुत तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है, मनुष्य भगवान का कसम उठाते हैं, ये बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने के लिए, तो मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूं तुम बहुत दुखी बने हो, अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है, सगे पर बाप का ध्यान रहता है سگے راجائی کا ورثہ لیتے ہیں اور لگے بچے تو لگے بھی ہیں نا, سگے بھی بچے ہوتے ہیں اور لگے بھی بچے ہوتے ہیں. تو سگے تو باپ کا دھیان رہنے سے باپ کا ورثہ لے لیتے ہیں, اور جو لگے بچے ہوتے ہیں وہ راجائی پراپت نہیں کرتے. وہ کیا پراپت کرتے ہیں؟ وہ پرجا ورگ میں چلے جاتے ہیں. 7664 کی وانی کا تیسرا پیج. اتنی ڈی ٹی کنگڈم استھاپن ہو رہی ہے, تم راجائی پانے کے لیے پرشارتھ کر رہے ہو. پہلے پہلے بات ہے پوترتا کی. اگر بھوگ وکار کا وکلپ آیا تو کرمیندریوں سے نہیں کرنا چاہیے. من میں آئے تو کوئی بات نہیں, بگا دو. کرودھ آیا مکھ سے غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر تمہارے میں بھوت ہوگا تو پھر لکشمی کو بھریں گے کیسے؟ جن میں پانچ وکار ہیں انہیں بندر کہا جاتا ہے. بابا نے بندر کے بدلے اپنی نلنی بچی کی فوٹو دے دی. ٹاک نو ایول سی نو ایول کا چتر بنوایا ہے. اس نلنی بچی کو باپ نے سینٹر کھول دیا ہے. جو کچھ پونجی تھی سب کچھ بچی کو دے دیا. جیسے بابا نے سب ماتاؤں کو دے دیا ویسے اس نے اپنی بچی کو دے دیا. سمجھا یہ بھی کنیا ہے, کیوں نہ ان سے شبھ کاری کراؤں. بچے نے یہ کہا میں شادی نہیں کروں گی, وہ پیسہ اس کاری میں لگا دو. تو ہم پتی دنیا کو پاون بنانے کی سروس کروں گی. قرضہ لے کر بھی بچی کو سینٹر کھول کر کے دیا, اور ابھی دیکھو خود بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں. بل بچے بھی ہیں, وارث بچی کو بنائی دیا, تو ان کا کتنا اونچ پد ہو جائے گا. بہت اونچ پد پاویں گے, بہتوں کی آشیرواد ان کے سر پر آوے گی, کیونکہ گاڈلی ہاسپٹل اتوا گاڈلی کالج کھول دیا ہے. اس سمے منشیوں کی چلن ہی ایسی ہے جو پیسے سب پاپ میں لگائے دیتے ہیں. پاپ کرتے اور کراتے رہتے ہیں, بالکل ہی پاپ آتما بن پڑے. اب باپ کہتے ہیں بچے محنت کرو, پاپوں کا بوجھا بہت ہے, نرنتر یاد کرنے کا پرشارتھ کرو. جو انت میں وہ اوستھا رہ جائے. سنیاسی بھی ایسے بیٹھے بیٹھے رہ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم جا کر کے برہم میں لین ہو جائیں گے, بس ایسے کہتے کہتے شریر چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. پھر آس پاس سناٹا ہو جاتا ہے. یہ بابا اپنے انبھو کی بات سناتے ہیں. انبھو بھی ہوتا ہے نا. باپ کہتے ہیں تم بچے ہو سرشٹی کی پاپ آتماؤں کو پنیہ آتما بنانے والے, سچی سچی گیان گنگائیں ہو. گنگا کے کنارے پر دیوتاؤں کا مندر دکھایا ہے, نام دیا ہے گنگا. اب پانی کی ندی تو نہیں پتت پاون بنا دے گی, نہ دیوتائیں پتت پاون ہیں. پتت پاون تو تم برہمن ہو, انہوں نے گنگا پر دیوتا کا چتر رکھ دیا ہے. دیوتائیں تو پتت کو پاون نہیں بناتے ہیں. منشی کو تو یہ گیان ہی نہیں جو کوئی کچھ ان سے پوچھ سکے. کہاں وہ پانی کی ندی, کہاں یہ دیوتائیں. اس سمے تو تم گیان گنگاؤں سے گیان اسنان کرتے ہو, تو وہ دیوتا بن جاتے ہیں. تمہاری سروس ہی ہے منشی دیوتا بنانے کی. یہاں آتما پوتر بن جاتی ہے. آتماؤں کو انجیکشن چاہیے. سنیاسی لوگ اسنان کرنے جاتے ہیں, تم ان سے جا کر پریم سے پوچھو. گنگا اگر پتت پاونی ہے تو گویا تم پتت ہو, تب تو یہاں آئے ہو. तब तो स्नान करते हो पावन बनने के लिए। तुमको मालूम है सन्यासी लोग क्या कहते हैं, इस बात का क्या जवाब देते हैं? बोलते हैं आत्मा तो पतित होती ही नहीं, ये शरीर पतित है, गंगा पतित पावनी है, परंतु पापात्माओं के स्नान करने से ये गंगा पतित बन गई है, इसलिए हम गंगा में पांव डालते हैं तो गंगा पावन बन जाती है। हम कोई पतित थोड़े ही हैं जो गंगा में पतित से पावन बनने के लिए स्नान करने आए हैं। तो बाबा इन सब बातों को अच्छी रीति अनुभवी है। बाबा के गुरु तो बहुत थे, तुम बच्चों ने इतने गुरु नहीं किए होंगे, पाप आत्मा ही जास्ती गुरु करती है। क्या कहा है, तुम बच्चों ने इतने गुरु किए नहीं होंगे क्योंकि तुम पाप आत्मा नहीं हो। कौन तुम माने कौन, तुम किसको कहा? सन्मुख कौन बैठते हैं, रुद्रमाला के बच्चे सन्मुख बैठते हैं या विजयमाला के बच्चे सन्मुख बैठते हैं? पढ़ाई सन्मुख बैठकर कौन पढ़ते हैं? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं या सूर्यवंशी बैठ सन्मुख बैठ पढ़ाई पढ़ते हैं? तो तुम बच्चों ने इतने गुरु नहीं किए होंगे, पाप आत्मा जास्ती गुरु करती है। तो जास्ती पाप किसने किए, राम वाली आत्मा ने या कृष्ण वाली आत्मा ने? हाँ, अरे तुम बच्चे इतने पाप नहीं करते हो, न तुमने इतने गुरु किए, तो सबसे जास्ती गुरु किसने किए? हाँ, ब्रह्मा ने जास्ती गुरु किए। तो जास्ती पापात्मा कौन बना? ब्रह्मा ही जास्ता पापात्मा बनते होंगे। बहुत रामायण आयत बैठ सुनाते थे, अब तो श्रीमत पर चल रहे, वेद शास्त्र रथ आदि तो पढ़ते आए, ग्रंथ आदि पढ़ते आए। मनुष्य कहते हैं ये वेद शास्त्र अनादि हैं, बाबा कहते हैं अनादि किसको कहते हैं ये जानते हो? क्या सतयुग से लेकर ये शास्त्र आदि थे? ड्रामा को अनादि कहा जाता है, बाकी शास्त्र तो बाद में बनते हैं, फिर भी वो ही शास्त्र बनेंगे। शास्त्र कब बनते हैं? शास्त्र तब बनते हैं जब शासन करने की दरकार होती है, और शासन सुधरेलों के ऊपर किया जाता है या अनसुधरेलों के ऊपर किया जाता है? जो सुधरे हुए लोग होते हैं उन पर शासन किया जाता है, या जो सुधरे हुए नहीं हैं उन पर शासन किया जाता है? जो सुधरे हुए नहीं हैं उन पर शासन किया जाता है, और देवताएं तो सुधरे हुए हैं, उन पर शासन करने की बात ही नहीं। वो देवताएं जब द्वापर युग से अनसुधरेले हो जाते हैं तब शास्त्र बनते हैं शासन करने के लिए। तो ये शास्त्र आदि द्वापर से बने हैं, बल मनुष्य कहते हैं अनादि, वो जानते नहीं है कि अनादि किसको कहा जाता है, ये तो बाद में बनते हैं, फिर भी वो ही बनेंगे। ये सब है भारत के शास्त्र। बाबा ने समझाया है गीता आदि के ये वेद शास्त्र सब पत्ते हैं, फिर भी वेद वेद करते रहते हैं क्योंकि गीता का मान कम कर दिया है। वेद तो कुछ भी नहीं दिखाते, वापस तो कोई जा नहीं सकता। गीता है माता पिता, बाकी सब उनके बाल बच्चे, बाल बच्चों से वर्षा मिल नहीं सकता। तो बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान और योग सिखाया था और फिर अब सीख रहे हो, भगवान खुद सिखला रहे हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको ये सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं वो ही मैं फिर सिखाता हूं। ये प्रभु का द्वार खुल जाता है। तुम अभी ईश्वर की गोद में बैठे हो, फिर तुम नई दुनिया में देवताओं की गोद में बैठेंगे। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद तुम देवता कुल में जावेंगे। 7 जून 64 की वाणी का 4वां पेज। अगर पापों का बोझा सिर पर होगा तो आसुरी गोद में जन्म लेंगे। यहां स्वर्ग तो है नहीं, बाकी कोई बड़े पवित्र घर में जन्म लेगा, जहां तुम पावन रहेंगे, उस घर को तुम रोशन करेंगे। बाबा का सर्वश्रेष्ठ बच्चा होगा तो उनको कोई ऐसा जन्म थोड़े ही मिलेगा। यहां से संस्कार ले जाएंगे तो कुछ न कुछ कर्तव्य करेंगे। बड़े ऊंच कुल में जन्म मिलता है, विनाश होने के बाद थोड़े बचते हैं, उनमें पुण्य आत्मा भी रहते हैं, पाप आत्मा भी रहते हैं। ये क्या बात हुई है? विनाश होने के बाद थोड़े बचेंगे, उन थोड़ों में पाप आत्माएं भी होंगे, पुण्य आत्माएं भी होंगे। तो पाप आत्माओं से नई दुनिया बनेगी क्या? फिर क्या मतलब हुआ? माने रुद्रमाला है पाप आत्माओं की दुनिया। जिन रुद्रमाला के मणकों ने जन्म जान्तर राजाई ली है, राजाई की है, राजाई में रह करके बहुत पाप किए हैं। और विजयमाला है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिन भारत की रानियों ने बहुत पवित्रता का पालन किया है। तो पुण्य कमाया है या पाप कमाया है? उन्होंने पुण्य कमाया है, इसलिए वो जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्माएं हैं। तो आधी पुण्य आत्माएं और आधी पाप आत्माएं बचती हैं। फिर हिसाब किताब चुकतू करके सतयुग में सब पावन बन जाएंगे। तो हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा है? बाबा की याद से तो हिसाब किताब चुकतू होगा। ये जो पावन आत्माएं हैं वो नई दुनिया में इकट्ठी हो जाएंगी, और जो पतित आत्माएं हैं वो सारी दुनिया में बिखर जाएंगी रुद्रमाला के मण के। क्योंकि एक धर्म के तो है नहीं, जो जिस धर्म के हैं वो उसी खंड में जाके गिरेंगे और वहां जाके सेवा करेंगे। तो दूसरे धर्म खंडों में विनाश बाद में होगा या पहले होगा है? बाद में विनाश होगा। तो एक तरफ विनाश होता रहेगा और दूसरी तरफ सेवा भी करते रहेंगे। सेवा करते करते जब उनके पाप सब खत्म हो जाएंगे तब फिर बाद में नई दुनिया में आके ऐड होंगे। तो संगम पर कुछ पतित कुछ पावन रहते हैं, फिर पतित खलास हो जाएंगे, फिर पावन ही पावन रहेंगे। अभी तुम सारी सृष्टि को पावन बनाते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी पंडित। आत्मा की मैल धोई जाती है। बाप कहते हैं मां मैं तुम याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। 8 को ही पूरी स्कॉलरशिप मिलती है और वो भी नंबरवार है। क्या ऐसे नहीं पूरी स्कॉलरशिप मिलती है तो उनमें कोई अंतर नहीं होगा, बाकी 108 को थोड़ी सजा खानी पड़ती है। थोड़ी सजा खानी पड़ती है ज्यादा? 108 तो राजा क्वालिटी की आत्माएं है ना, तो थोड़ी सजा खाते हैं। धर्मराज बाबा साक्षात्कार करावेंगे, तुम तो वो ही हो ना, तुमको कितना समझाते थे फिर भी तुम हमारे सामने पड़ते थे, हमारी मत नहीं मानी, अब पाप का बोझा सिर पर चढ़ गया। वहां ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं, फिर उसी समय प्रश्नावली होती है। परंतु फिर कर ही क्या सकते हैं, वहां रिश्वत आदि तो कोई की चल नहीं सकती है। धर्मराज है सुप्रीम जस्टिस, सब साक्षात्कार कराते रहते हैं। बड़े बड़े अन्यायी अजामिल जैसे पापी सब यहां ही होते हैं। बाबा बहुत अनुभवी है, कोई कोई के बच्चे ऐसे गंदे होते हैं एक वर्ष में ही करोड़ों उड़ाए देते हैं, باپ کہتے ہیں بڑے اجامل تو یہاں بنتے ہیں، جو یہاں ہمارا بن کر کے آشیروت سننتی کتھنتی یہو مایا بھاگنتی ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھا جاتا ہے یہ بڑا اجامل تھا، بہت میلا کپڑا ہوتا ہے تو ان کو سٹکتے سٹکتے پھٹ پڑتا ہے، ایسے بہت ہوتے ہیں، ہوئے ہیں اور بہت ہوں گے، بے حد کی باپ کی مت پر نہیں چلتے ہیں تو ایسا حال ہوتا ہے۔ باپ کہتے ہیں میری داڑھی کو دیکھو، تم پوتر بنو، تم کو پوتر دنیا کا مالک بناؤں گا۔ پوتر نہیں بنتے ہیں تو کہیں گے یہ تو کوئی نالائق ہے، پھر تو دھرمراج پوری میں ہڈی ہڈی توڑواؤں گا۔ کوئی تو جھٹ پرتیجا کر لیتے ہیں، بلڈ سے بھی لکھ کر کے دیتے ہیں، کوئی پھر کہتے ہیں پرسارتھ کروں گا۔ ارے باپ کہتے ہیں ابھی پرتیجا کرو، پھر کروں گا گا کیوں، یہاں سے باہر گیا مایا ناک سے پکڑ لیتی ہے۔ کوئی تو کہتے ہیں بابا آپ کی بات تو برابر ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں اچھا سوچ کروں گا، شرم نہیں آتا ہے۔ بابا تو کوئی کوئی بھی جھٹ ناک سے پکڑ لیتے ہیں، اگر کرودھ کا بھوت ہوگا تو پھر سورگ کے مالک کیسے بنیں گے؟ بابا ایسے نہیں کہتے، بچوں آج کی شرم سنبھال مت کرو، سب کچھ کرو پرنتو سریمت پر چلو، بابا اچھے کام میں الاؤ کرے گا، اگر کچھ پاپ کر لیا تو دان کرنے والے پر پاپ چڑھ جاتا ہے۔ منزل ہے سریمت پر چلنے سے ہی شریشٹ بنیں گے، سریمت سے ہی وشو کے مالک بنتے ہو۔ یہاں پرتیجا کی تو مدد بھی ملے گی، ہمت بچے مدد باپ، پھٹ سے پرتیجا کرنی ہوتی ہے، پھر ڈر رہتا ہے ہم نے قسم اٹھایا ہے، بچہ ہی نہ بنے گا تو پھر مدد کہاں سے ملے گی؟ سو تو یہ لوگوں کو تھوڑا ہی مدد ملتی ہے، ماں تو یہ لوگوں کو مدد ملے گی، تم کو باپ سے 21 جنموں کے لیے ہیلتھ ویلتھ ہیپینس ملتی ہے سریمت پر چلنے سے۔ کوئی کے پاس صرف ہیلتھ ہے ویلتھ نہیں ہے تو پھر کس کام کی؟ کوئی کے پاس ہیلتھ ہے ویلتھ نہیں ہے تو کام کا ہے ہی نہیں۔ یہاں تو تم کو سب کچھ ملتا ہے۔ اچھا میٹھے میٹھے سیکھ لے بچوں کو یاد پیار، گڈ مارننگ، اوم شانتی۔